أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق الله العلي العظيم. پچھلے درس میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پردے غیبت میں جانے سے پہلے، یعنی غیبت صغرا کے زمانے میں، غیبت کبرا میں جانے سے پہلے، آپ نے سامرہ میں زندگی گزاری اپنے والد گرامی کے ساتھ. اور آپ کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد، یعنی غیبت صغرا کے آغاز کے بعد، دینی اور سماجی اور معاشرتی مشکلات کو حل کرنے کے لیے نوابین کا سلسلہ شروع ہوا، اور چار خصوصی نائب یکے بعد دیگر نیابت کی ذمہ داری کو نبھاتے رہے. اور یہ بھی عرض ہوا کہ غیبت صغرا کے زمانے میں مومنین سے زمانے کے امام کا سلسلہ کلی طور پر منقطع نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کے خصوصی نائبین کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام سے رابطے میں رہتے تھے، اور شرعی مسائل کا حل امام سے طلب کرتے تھے، خط کے ذریعے اور زبانی طور پر، اور دینی مسائل اور احکام سے آگاہ ہو جاتے تھے. لیکن غیبت کبرا کے آغاز سے یہ رابطہ منقطع ہوا، جیسا کہ پچھلے درس میں عرض ہوا. جناب علی ابن محمد سموری کی وفات، یعنی 329 ہجری کے بعد، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت کبرا میں چلے گئے، اور آپ کے غیبت کبرا کا زمانہ اور سلسلہ شروع ہوا. لیکن غیبت کبرا کے زمانے میں زمانے کے امام نے ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں عادل، پرہیزگار، متقی اور فقیہ اور اسلام شناس مجتہد کے حوالے کر دیا، اور فقہا کی پیروی کی تاکید کی. और इस तरह नियाबत का एक और सिलसिला जिसे नियाबत आम्मा कहा जाता है शुरू हुआ। और वाकई इमाम ज़माना अज़ल्लाह ताला फ़र्ज़ शरीफ की ग़ैबत सोरा के आखिरी अय्याम में जिनाब इसहाक़ इब्ने याकूब नामी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना अज़ल्लाह ताला फ़र्ज़ शरीफ के सहाबे ने इमाम ज़माना की ख़िदमत में एक ख़त लिखा जिसमें मुतअद्दिद सवालात पूछे गए, चूँकि यकीन हो चुका था कि ग़ैबत कुबरा का ज़माना शुरू होने वाला है, लिहाजा उसमें मुतअद्दिद सवालात उठाए गए मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से। और उनमें से एक मसला ये था, सवाल ये था कि ग़ैबत कुबरा के ज़माने में हम अपने मुश्किलात के हल के लिए किसकी तरफ रुजू करें। तो इमाम ज़माना अज़ल्लाह ताला फ़र्ज़ शरीफ की तरफ से एक तौक़ीअ सादिर हुई, एक ख़त सादिर हुआ, उसमें इसहाक़ इब्ने याकूब के सवालात के जवाबात दिए गए थे। और उन्हीं जवाबात के ज़िमन में इस सवाल का जवाब कि ग़ैबत कुबरा के ज़माने में हम अपने दीनी शरई मसाइल के हल और इसी तरह इज्तिमाई और इनफरादी मुश्किलात के हल के लिए किसकी तरफ रुजू करें। तो इमाम ने उस सवाल के जवाब में यूँ तहरीफ़ फरमाया, वअम्मल हवादिसुल वाक़ियातु फ़रजिउ इला रुवाति हदीसना, और आइंदा पेश आने वाले वाक़ियात और हवादिस और नत नए मसाइल और जदीद मसाइल के हल के लिए फ़र्जिउ इला रुवात हदीसना, हमारी हदीस के रावियों की तरफ यानि फ़कीह और मुज्तहिद की तरफ रुजू करें। क्यों? फिर फरमाते हैं फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, रावियान हदीस उलमा और फुकहा ग़ैबत कुबरा के ज़माने में हमारी तरफ से तुम लोगों पर हुज्जत है। व अना हुज्जतुल्लाह अलैहिम, और हम अल्लाह ताला की तरफ से उन उलमा और फुकहा पर हुज्जत है। ज़माने ग़ैबत कुबरा में अपने दीनी और दुनियावी मसाइल के हल के लिए पेश आने वाले नए मसाइल के हल के लिए और वाक़ियात और हवादिस के हल के लिए इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल के हल के लिए रावियान हदीस की तरफ मुराजा करें, उलमा और फुकहा की तरफ मुराजा करें। और इमाम ने फरमाया उनकी इत्तिबा वाजिब है, उनकी पैरवी वाजिब है। या तो जाएं खुद हदीस शिनास बन जाएं, फकीह बन जाएं, मुज्तहिद बन जाएं। अगर हदीस शिनास बनना, मुज्तहिद बनना, फकीह बनना मुमकिन ना हो तो फुकहा की पैरवी करें, इसलिए कि वो खुदा की हुज्जत है तुम लोगों पर। चूँकि हम खुदा की तरफ से लोगों पर हुज्जत हैं और हमारी तरफ से रावियान हदीस उलमा और फुकहा गैबत कुबरा के ज़माने में तुम लोगों पर हुज्जत है, तो अना हुज्जतुल्लाह अलैहिम, और मैं उन पर खुदा की तरफ से हुज्जत हूँ, मैं उनका निगरान हूँ और वो हजरात तुम लोगों का निगरान है, लिहाजा उनकी पैरवी करो, उनकी इत्तबा करो। इस तौकी से ये नतीजा निकलता है और ये नतीजा हासिल होता है कि इंसानी मुआशरा और इस्लामी मुआशरा और समाज का सरबरा इस्लामी नुक्ते निगाह से तालीमात अहले बैत की रोशनी में खुदा के हुज्जतों के हुक्म की रोशनी में, आइमे ताहरीन के फरामीन की रोशनी में, ज़माने गैबत में इस्लामी मुआशरे का सरबरा आदिल फकीह और मुज्तहिद है, कोई दूसरा हक नहीं रखता इस्लामी मुआशरे की सरपरस्ती करे। इस्लामी मुआशरे की सरपरस्ती का हक गैबत कुबरा के ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ जामे शराइत फकीह को है। और जैसा क्या रसुआ मोमिनून मोमिनीन पर भी शरई तौर पर यह फरीज़ा है, मोमिनीन का फरीज़ा बनता है कि वो ज़माने गैबत में उलमा और फुकहा के अहकाम उनके फतावे पर अमल करें, ताकि कल को क़यामत में मेज़ान आदिल पर हुज्जत कायम कर सके, दलील पेश कर सके अपने आमाल और किरदार के हवाले से। मुसलमानों खुसूसन शेयों के इनफिरादी और इज्तिमाई फराइज की शिनाख्त के लिए नियाबत आम्मा का ये तरीक़ा इस बात की अक्कासी करती है कि इमामत और रहबरी का अज़ीमुश्शान निज़ाम मज़हब अहले बैत में एक तरक्की याफ्ता निज़ाम है, और मज़हब अहले बैत के पैरोकारों को किसी भी ज़माने में गैबत सोरा से लेकर आज तक 1200 सालों में और आज के बाद से ज़माने के इमाम के ज़ुहूर तक किसी भी ज़माने में आइम्मे ताहरीन ने, खुदावंद मुताल ने, पैगंबर के हकीकी जानशीनों ने हिदायत के चश्मे के बग़ैर नहीं छोड़ा, तारीकी में छोड़कर नहीं गए गैबत के पर्दे में, बल्कि हिदायत के चराग को रोशन करके दिखलाया और हुक्म दिया उसी चराग की रोशनी में आगे बढ़ो, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाओ और आखिरत में भी सर बुलंद हो जाओ। हिदायत के चराग रोशन किए नियाबत आम्मा के एनवान से, रावियान हदीस के नाम से, ताकि इंसानी मुआशिरा इस दुनिया के पुरतलातुम दरिया में गर्क न होने पाए। अलबत्त जैसा क्या रस हुआ गैबत कुबरा के ज़माने में खुसूसी और नाइब ख़ास का सिलसिला ख़त्म हो गया, इमाम ज़माना ने किसी का नाम नहीं लिया कि गैबत के ज़माने में फ़लान 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 शख्स फ़लान सन में और फ़लान साल तक वो मेरे नाइब है, नहीं, बल्कि कुछ खुसूसी शराइत और सिफात बयान किए जिस शख्सियत में भी, जिस आलिम में भी, जिस फकीह में भी ये शराइत पाए जाएं उनकी इत्तबा करना मोमिनीन का फरीज़ा है, और वही ज़माने के इमाम की तरफ से लोगों पर खुदा की हुज्जत है। उनकी पैरवी न करना उनकी इत्तिबा न करना गुनाह है शरी नुक्ते निगाह से, और उनकी पैरवी के बग़ैर, उनकी इत्तिबा के बग़ैर या तो ख़ुद मुज्तहिद बन जाए, या अगर ख़ुद में मुज्तहिद बनने की सलाहियत ना हो तो फुकहा के फतवा पर अमल करने के बजाय अपनी ज़हनी तरावीशों पर अपनी फ़िक्र के मुताबिक अगर कोई अमल करें तो वो लोग सही तरीक़े से भी वो अमल अहकाम इलाही अंजाम पाया हो, नमाज को सही तरीक़े से अंजाम दिया हो, रोज़े को सही तरीक़े से अंजाम दिया हो, उस की इबादत वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें वो शर्त नहीं है। तकलीद के बग़ैर जो आमाल बजा लाएगा, इबादत बजा लाएगा, वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा करना बहुत ज़रूरी है। ये नियाबत आम्मा की जिम्मेदारी और मसूलियत कोई आम मसूलियत नहीं है, कोई आम जिम्मेदारी नहीं है जो मुझ जैसे हर सर पे अमामा रखने वाला इस्लामी माशरे का सरबराह नहीं बन सकता। शराइत है, ये मसूलियत इतनी संगीन है, यह जिम्मेदारी इतना अहम है कि ज़माने के इमाम ने, बल्कि उससे पहले हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दोनों ने ज़माने ग़ैबत में रावियान हदीस के शराइत बयान किए हैं। अगर किसी में ये शराइत पाए जाए तो उसकी पैरवी कर सकता है, लेकिन अगर इन शराइत में से एक भी शर्त ना हो तो किसी भी सूरत में, वलो वो मुज्तहिद हो, आलिम दार हो, इज्तिहाद कर सकता है, इस्तिंबात कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, अपने ज़माने के सबसे पढ़ा लिखा आदमी भी है, दीनी मसाइल से आगाह भी है, लेकिन दूसरे शराइत ना हो तो उसकी पैरवी और उसकी तकलीद जायज़ नहीं है। ये शराइत उसमें मौजूद हो, क्योंकि मसूलियत संगीन है, जिम्मेदारी बहुत भारी है, लिहाजा हर कस नाकस की तकलीद नहीं कर सकता। इसीलिए तूले तारीख में फुकहा ने फतवा दिया है, मुज्तहिद जामी शराइत जो हर लिहाज से सबसे आलम हो, हर लिहाज से, सिर्फ उसी की तकलीद कर सकता है। बहुत संगीन और बहुत ही भारी जिम्मेदारी है, लिहाजा इस जिम्मेदारी को निभाने वाले शख्स के लिए फकीह होना, इस्लामी अहकाम में दीन शिनास होना ज़रूरी है। दीन शिनास होना फ़कत काफ़ी नहीं है, बल्कि आदिल हो, आदिल होना काफ़ी नहीं है, मुत्तकी और परहेजगार हो, मुत्तकी और परहेजगार होना काफ़ी नहीं है, बल्कि अहकाम इलाही की हिफाजत करता हो, कयास और इस्तेहसान के बुनियाद पर हुक्म सादिर न करता हो। इसीलिए रिवायत में कैद कर दिया, रावियान हदीस, अइम्मा के हदीस से इस्तिंबात करता हो, कुरान और सुन्नत से इस्तिंबात करता हो, अपने नाकिस अक्ल के मुताबिक फतवा सादिर न करता हो। शर्त है ये, कयास और इस्तेहसान बातिल है, कयास और इस्तेहसान के बुनियाद पर जो फतवा सादिर होता है वो फतवा काबिल कबूल नहीं है इन अहादीस की रोशनी में। फकीह हो, इस्तकामत रखता हो और तकवा और परहेजगारी रखता हो, आदिल हो, दीन का मुहाफिज हो, हवाए नफ्स का मुखालिफ हो, और अपने मौला और आका ज़माने के इमाम के अवामिर और हुक्म की पैरवी करने वाला हो, खुद मुज्तहिद के लिए ज़रूरी है। जो आइम्मा से अहकाम, जो पैगंबर अकरम कुरान और सुन्नत में जो अहकाम साबित है, उनकी खुद पैरवी करे पहले। चिनांची हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वअम्मा मन कान मिन अल्फुकहा, ये जो जिसकी पैरवी वाजिब है, जिसकी तकलीद वाजिब है मोमिनीन पर, वो ये शख्सियत हैं जिसमें ये शराइत पाई जाएं, उसकी तकलीद जायज़ है। वअम्मा मन कान मिन अल्फुकहा, फुकहा में से वो हज़रत, मिनल फुकहा, मिन बाज़िया है, ہر مجتہد قابل تقلید نہیں ہے، ہر مجتہد پیروی کے قابل نہیں ہے، یہ حدیث من بعضیہ ہے. فقیہ ہے، مجتہد ہے، استنباط کر سکتا ہے، لیکن دوسرے شرائط نہ ہو، سب میں نہیں ہوتا، صرف بعض مجتہدین. واما من کان من الفقہا، راویان حدیث میں سے، فقہا میں سے، مجتہدین میں سے جو شخص، سائنا لنفسه، وہ صیانت نفس کے مالک ہو، حافظا لدینی، دین کا محافظ ہو، احکام الہی کا محافظ ہو، قرآن و سنت کا محافظ ہو، مخالفا لہوا، ہوائے نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا اور آقا زمانے کے ایمان کے احکام کی پیروی کرنے والا ہو، اگر یہ شرائط ان میں ہو تو فلل عوام ان یقلدوا. اگر کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو جائے تو اس وقت عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کرے. پھر حدیث کے آخر میں فرمایا، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلُّهُمْ. اور یہ صفات، تمام صفات ہر فقیہ میں نہیں پائی جاتی، یہ تمام شرائط ہر فقیہ میں نہیں پائی جاتی، بلکہ بعض فقیہ میں، بعض مجتہدین میں یہ شرائط پائے جائیں گے، بعض مجتہدین اس شرائط کے حامل ہوں گے. اور یہ بھی واضح ہے کہ ان میں سے ایک سب سے اہم، فقیہ ہونے کے علاوہ، عادل ہونے کے علاوہ، متقی اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ، ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والا ہو. بہت خطرناک نقطہ ہے یہ، بہت خطرناک شرط ہے یہ فقیہ کے لیے، ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والا ہو. آپ جانتے ہیں کہ ہوائے نفس جو ہے لوگوں کے مختلف ہو سکتے ہیں، جوان کے نفسانی خواہشات کچھ اور ہیں، بوڑھے حضرات، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، بوڑھے حضرات کے خواہشات نفسانی کچھ اور ہیں، جوان کے کچھ اور ہیں، خواتین کے کچھ اور ہیں، ہر قسم کے، ہر فکر رکھنے والے انسانوں کے خواہشات مختلف ہو سکتے ہیں. لہذا مخالفاً لہوا کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مجتہد تارک نماز نہ ہو، تارک صلاۃ نہ ہو، روزہ رکھتا ہو، یہ شرائط نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. حج پہ جاتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، خمس دیتا ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اور حلال اور ان چیزوں کی وہ پابندی کرتا ہو، صرف یہ کافی نہیں ہے، یہ ہر مومن پر واجب ہے، مجتہد سے مخصوص نہیں ہے، یہ عمومی شرائط ہیں. ہوائے نفسانی کی مخالفت کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ مجتہد شراب نہ پیتا ہو، مجتہد گانے کو نہ سنتا ہو، مجتہد دوسرے عام لوگوں کی طرح بازاروں میں عام لوگوں کی طرح نہ ٹہلتا ہو، نہیں، بلکہ ہوائے نفس کے مخالفت، فقیہ کے ہوائے پرستی اور عوام الناس کے ہوا پرستی میں بہت فرق ہے، فرق ہونا چاہیے. علی کی نفس پرستی اور مالک اشتر کی نفس پرستی میں آسمان و زمین کے فرق ہے. لہذا عوام اور فقیہ کے نفس پرستی میں فرق ہے، بہت فرق ہے. اور فقیہ کے عدم نفس پرستی یعنی ہوا نفس کی مخالفت کا معیار یہ ہے کہ عہدہ اور منصب کی خواہش نہ رکھتا ہو، شہرت سے لگاؤ نہ ہو، اپنے پیچھے لوگوں کے چلنے کی تمنا نہ رکھتا ہو، ہاتھوں کو چومنے کی تمنا نہ رکھتا ہو، اپنے ساتھیوں، عزیزوں، اقارب، خاص طور پر اپنے صاحبزادوں کو، اپنے دامادوں کو، اپنے صاحبزادوں کو بیت المال، خمس اور زکوٰۃ وغیرہ میں خورد برد کی کھلی اجازت نہ دیتا ہو، یہ شرائط ہیں. ورنہ نماز پڑھنا سب پر واجب ہے، حج پہ جانا سب پر واجب ہے، یہ فقیہ سے مخصوص نہیں ہے. ان چیزوں میں جو ہے فقیہ ہوائے نفس پرستی کے شکار نہ ہو. تو اگر کوئی ایسی شخصیت مل جائے تو عوام پر واجب ہے اس کی پیروی کرے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اگر پیروی نہ کرے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں. ان صفات کے حامل دنیا پر حریص نہ ہو، और आदिल हो, फकीह हो, मुज्तहिद हो, हवा नफ्स की मुखालफत करता हो, आदिल भी हो, सबको एक ही नज़र से देखता हो और सबके साथ एक ही तरीके से पेश आता हो, ये तमाम सिफात मौजूद हो, तो उस फकीह की पैरवी सब पर वाजिब है। इसीलिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रावियान हदीस जिनमें ये तमाम सिफात पाए जाएं, वहुम बाज़ु फुकहा शिया ला कुल्लुहुम, यानी मज़कूर सिफात सिर्फ बाज़ शिया फुकहा में पाए जा सकते हैं, हर मुज्तहिद में नहीं। और अगर ऐसा फकीह हो तो उनकी पैरवी वाजिब है और उनकी जिम्मेदारी और मसूलियत भी इतना संगीन है, लिहाजा इन तमाम शराइत के हामिल फकीह और आलिम की पैरवी सब पर वाजिब है। और यही फुकहा और उलमा हैं जो असल गैबत में मुसलमानों को गुमराह होने से बचाता है। उलमा की अहमियत वाकई फकीह फकीह बन जाए तो इमाम मासूम के हुजूर और गैबत में कोई फर्क नहीं करता, लेकिन फकीह के लिए शायद वाकई वो रावी हदीस के इन तमाम शराइत के हामिल हो और ऐसी शख्सियतों ने 1400 सालों में इस्लाम को बचाया है, इस्लाम की मुहाफिजत की है, मजहब अहले बैत को बचाया है, मकतब अहले बैत के पैरोकारों की जान माल और आबरों की हिफाजत की है। अगर आज मजहब अहले बैत हम तक पहुंचा है तो ऐसी सिफात के हामिल फुकहा की वजह से, शेख मुफीद की वजह से, शेख सदूक की वजह से, कुलैनी की वजह से, अल्लामा हिल्ली की वजह से, शहीद अव्वल की वजह से, शहीद सानी की वजह से, शहीद सदर की वजह से, इमाम खुमैनी की वजह से, सैयद खूवी की वजह से, इस कस्म के फुकहा की वजह से हम तक आज मजहब अहले बैत पहुंचा है। इनकी पैरवी सब पर वाजिब है लेकिन ये इन शराइत के हामिल, अगर ये शराइत ना हो तो तकलीद जायज नहीं है। इस हदीस की रोशनी में यह हदीस सही सनद और सब के पास काबिल कबूल हदीस में सब अपनी किताबों में नकल करते और यही फुकहा है जो 1400 सालों से इस्लाम मुहम्मदी का की मुहाफिजत की है, मजहब अहले बैत की मुहाफिजत की है। चिनांचे हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और ये हदीस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से भी नकल हुई है, दोनों बाप बेटे फरमाते हैं, लौला मैयबका बादा गैबत कायमकुम अलैहिस्सलाम, अगर ऐसे उलमा और फुकहा ना होते जो कायम आले मोहम्मद की गैबत के ज़माने में लोगों को उनकी तरफ दावत देते, वद्दालीन इलैह, और उनको अपने इमाम ज़माने के इमाम की मारिफत की तरफ हिदायत करते, अगर ऐसे फुकहा ना होते असल गैबत में, वज़्ज़ाबीन अन दीनिही बिहुज्जतिल्लाह, और अगर ये उलमा ना होते जो खुदा की हुज्जतों और दीनी मुस्तहकम दलाइल और अहकाम की हिमायत न करते ये फुकहा, वल्मुनक़िज़ीन ज़ुआफ़ा इबादिल्लाह मिन शिबाक इबलीस व मरदातिही, असल गैबत में जो अल्लाह के बंदों को शैतान और शैतान सिफत इंसानों और वमिन फिखाखिन नवासिब और नासिबी और अहले बैत के दुश्मनों के शर और उनके जाल से नजात न देते, तो इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं ज़माने गैबत में गैबत कुबरा में अगर ऐसे उलमा न होते तो लमा बाकिया अहदुन इल्ला इर्तद्द अन दीनिल्लाह, तो फिर दीन खुदा पर कोई भी मोमिन बाकी ना रहता, कोई मुसलमान हकीकी दिन पे बाकी ना रहता, सब मुर्तद हो जाते। गैबत के ज़माने में अगर लोगों का ईमान महफूज है तो शेख मुफीद जैसे फ़कीह की वजह से, शेख सदूक जैसे फ़कीह की वजह से, इमाम खुमैनी जैसे फ़कीह की वजह से, सैयद खूवी जैसे फ़कीह की वजह से, लिहाजा इनकी पैरवी वाजिब है और इन सिफात और शराइत के हामिल मुज्तहिद की तकलीद वाजिब है और मुज्तहिदीन पर भी वाजिब है। ये शराइत अपने अंदर पैदा करें तब रिसाला लिखें, उससे पहले रिसाले अमल लिखने का हक نہیں ہیں. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے, ان میں غور کرنے, فکر کرنے, دقت کرنے, سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.